दोनों गार्डों की बात सुनकर अयांश और विनित दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों ने एक साथ आरवी का नाम लिया। आरवी? तभी अयांश ने सामने वाले गार्ड की कॉलर पकड़कर बोला, वो वर्तिका को कब लाई और कब ले गई यहां से? गार्ड थोड़ा डरा सा हुआ। आज सुबह ही, विनित बोला। क्या, पर सुबह तो मैं यहां आया था? दूसरा गार्ड बोला, हाँ सर, वो आपके बाद आई थी और थोड़ी देर बाद वर्तिका मैम को अपने साथ ले गई। उसके बाद डॉक्टर्स, नर्सेस सब चले गए। हम दोनों यहाँ हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए रुके हैं, खाली नहीं छोड़ सकते ना। तभी अयांश उस पर चिल्लाया, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इतना सब हुआ यहाँ, किसी ने भी नहीं बताया। सबको कहा था ना मैंने कि कुछ भी हो कॉल मी, इन्फॉर्म मी जल्द से जल्द। विनित उनको घूरते हुए बोला, कमाल है, किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा, सब गायब यहाँ से। दोनों गार्ड एक साथ बोले, सॉरी सर। तभी एक गार्ड ने कहा, सर सब अचानक हुआ, वो आईं दोनों और फिर उन्हें लेकर चली गईं। जाते जाते आपके दादाजी ने सबको वॉर्न किया कि हम में से कोई अभी आपको कुछ नहीं बताएगा, मैं खुद बता दूंगा अपने पोते को। अगर हमने बताने की या आपको फ़ोन करके कुछ कहने की कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, खुद पता चल जाएगा आपको। और बाकियों को भी यहाँ से जाओ कह दिया आपके दादाजी ने, और कल से पहले की तरह ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, ये भी बोल दिया था साफ साफ आपके दादाजी ने। दूसरा गार्ड बोला, हाँ सर, और वो लड़की भी बोली कि बेटे से ज़्यादा खतरनाक पापा होते हैं और पापा से ज़्यादा दादा। बोली, दिनकर मेहरा अयांश मेहरा के बाप तो पंगा मत लेना, खिलाफ जाने का सोचना भी मत, वरना मिस्टर मेहरा जान से मारने की धमकी देते हैं, पहले ये सीधा उड़ाएंगे। तो हम सब में से किसी की हिम्मत नहीं हुई सर आपके दादाजी के खिलाफ जाने की, हम सबको उनकी बात माननी पड़ी, जो उन्होंने बोला वो सब करना पड़ा। हम में से कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए चाहकर भी कोई आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, नजरें झुकाते हुए। ये सुनकर अयांश ने जिस गार्ड को पकड़ा था उसे झटकाकर छोड़ दिया और मुट्ठी बांधकर गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा। विनित पैर पटकते हुए बोला, कमाल है, आरवी ने ये सब किया, दादू को इसका मतलब पता चल गया है सब, उस आरवी ने उनको सब बता दिया दी के बारे में। तुम तो कह रहे थे बताना नहीं अयांश, पर देखो उसने दादू को अपनी साइड करके क्या किया है, अगर इस वजह से दी को कुछ हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, गुस्से आते हुए। अयांश आरवी के बारे में सोचते हुए बोला, छोड़ूंगा तो मैं नहीं उसे, क्यों किया आरवी तुमने ऐसा, क्या मतलब था ये सब करने के पीछे तुम्हारा, दांत पीसते हुए। विनित बोला, दी का इलाज चल रहा था अयांश, वो कैसे यहाँ से उनको ले जा सकती है, दादू उसका साथ कैसे दे सकते हैं इस सब में, पता नहीं क्या चाहती है वो, क्या बोला होगा दादू को उसने, मैंने बोला था पहले ही दादू को बताने का, अब देखो पता नहीं हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेज सबसे दूर दी को कहाँ लेकर गई है वो आरवी और क्यों। अयांश अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बोला, इसका जवाब वो खुद देगी। विनित ने दोनों गार्डों की ओर गुस्से से देखा और अयांश के पीछे भागा। अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की तो विनित गाड़ी में बैठते हुए बोला, अब कहाँ जा रहे हैं हम? घर, अयांश ने कहा और दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। अयांश फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तभी विनित अयांश की ओर देखते हुए बोला, उसने जानबूझकर दादू को अपनी साइड किया है ना अयांश, क्योंकि सब जानते हैं वो तुम्हारे दादू हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम उसे नहीं छोड़ते, पर कोई दादू के भी खिलाफ जाता है तो तुम किसी भी हाल में उनको नहीं छोड़ते। और अब तो आरवी भी ये जानती है कि एक दादू ही हैं जो तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते हैं। एक तुम उनकी ही सुनते हो अगर कुछ सुनते हो तो, वरना कहाँ तुम पर किसी की चलती है। और इसी बात का उसने फ़ायदा उठाकर ये सब किया है, सोचा होगा दादू साथ होंगे तो वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं उसके दिमाग में अब कौन सा नया खेल चल रहा होगा। दी को जो तकलीफ दे रखी है वो काफ़ी नहीं थी जो अब और देनी चली, लगता है चाहती ही नहीं दी ठीक हो, इतना दी के साथ करके भी उसका मन न भरा, कोई करता भी क्या। अयांश मेहरा को जहाँ दुनिया जानती है वहाँ दिनकर मेहरा का भी नाम है, पहचान है, तबका है शहर में, इसके साथ वो तुम्हारे दादू हैं। बोला होगा दादू ने सबको, मेरी मान लो अयांश तुमको कुछ नहीं कहेगा, और अब तुम उनको कुछ कह भी ना पाओगे, दादू के ऊपर से थोड़ी जाओगे, मजबूरन कहो या डर, सबने दादू की मानी, या कहूँ तो जो आरवी चाहती थी वही हुआ, उसकी साइड हुए सब। पर सच बता रहा हूँ अयांश, ये जो हुआ है इसके पीछे ज़रूर आरवी की कोई नई साजिश है, पर वो करना क्या चाहती है ये सब करके, परेशान होकर सोचते हुए। अयांश गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, जा रहे हैं ना घर, पता चल जाएगा, एंड डोंट वरी, अगर फिर कुछ गलत करने की सोच रही है तो इस बार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इतना आसान नहीं है मेरे ही सामने साजिश रच पाना। माना दादू का इस्तेमाल किया है उसने, पर वो मेरे दादू हैं जिनको वो पूरी तरह अपनी साइड नहीं कर सकती है, दांत पीसते हुए। विनित बोला, इसका मतलब उसने दादू को पूरा सच तो बताया नहीं होगा ना, जब हम पूरा बताएंगे सच उनको तो वो उस आरवी का साथ देना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दादू दी से बहुत प्यार करते हैं, देखना फिर वो भी आरवी को माफ़ नहीं करेंगे, बड़ी चहेती बन रही है ना उनकी। विनित बोल ही रहा था कि अयांश उस पर चिल्लाया, मुंह बंद रखेगा अपना थोड़ी देर, जा रहे हैं ना घर, पता चल जाएगा सब, और पूरा सच पता नहीं है तो दादू को तो बता देना, पर अभी चुप रहा। विनित भी जोर से बोलते हुए बोला, मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है, उस आरवी के खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए, बकवास बंद कर अपनी, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हो रखा है और मत कर, और मैं कौन सा उस आरवी की तारीफ कर रहा हूँ जो तेरे उसके खिलाफ बोलने पर कुछ पर चिल्लाऊंगा, अयांश ने विनित को एक नज़र घूर कर सामने देखते हुए कहा।
विनित बाहर की ओर देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, रहने दे जैसा है, जानता नहीं, खुद चाहे उस लड़की से लाख गुना नफरत करे, बेहिसाब डरते, पर कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो बर्दाश्त नहीं। अयांश पौहें से कोड़ते हुए बोला, बोलना ही है तो जोर से बोल, यूं अंदर ही अंदर क्यों बड़बड़ा रहा है। विनित अयांश की ओर देखते हुए बोला, जल्द घर पहुंचा दे, मुझे दी को देखना है, वो ठीक है ना? फिलहाल उनसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये सुनकर अयांश ने गुस्से से विनित को देखा और बिन कुछ बोले गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी मेहरा सदन में थी। दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर की तरफ भागे, पर जैसे ही अंदर पहुंचे तो दोनों के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। दोनों ने फट से हैरान होते हुए एक दूसरे की ओर देखा और फिर वापस सामने देखा। ठीक सामने हॉल के बीच में आरवी आंखों पर पट्टी बांधे हवा में बाहें हिलाती गोल गोल घूमते हुए कह रही थी, कहाँ हो वर्तू, हम अभी आपको पकड़ लेंगे और देखना जीत जाएंगे। ये सुनकर वर्तिका हॉल के एक पिलर से झांकते हुए बोली, ओफो सोना परी, पहले मुझको पकड़ो तो सही, फिर ही जीतोगी ना। आरवी आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ तो तुम्हें ढूंढकर अभी पकड़ लेंगे। राधे भैया, दादाजी, हम जीतेंगे ना, वर्तू को पकड़कर उसे हरा देंगे ना। ये सुनते ही वर्तिका बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, इनको पता है मैं जीतूंगी, हारूंगी नहीं, है ना। मुस्कुराते हुए दिनकर जी और राधे की ओर देखते हुए, जो सोफे पर बैठे थे और राधे उनके पास खड़ा था। दिनकर जी और राधे दोनों ने वर्तिका की ओर देखकर हामे सिर हिलाया तो वर्तिका वहीं कूदते हुए ताली बजाने लगी। तभी आरवी सोफे से टकराते हुए बोली, इसका मतलब आप दोनों मेरी साइड नहीं हो। वर्तिका हंसते हुए बोली, नहीं है सोना परी। अच्छा बताओ कौन जीतेगा, वर्तू या सोना परी, खुद की ओर और आरवी की ओर अंगुली से इशारा करते हुए। आरवी बोली,
हाँ हाँ बताओ बताओ। तभी दोनों एक साथ बोले, वर्तू। ये सुनकर वर्तिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, सोना परी मैं वहाँ नहीं यहाँ हूँ। आरवी उस ओर जाती हुई बोली, हाँ तो वहीं आते हैं और बताते हैं कौन जीतता है, वर्तू या सोना परी। तभी ये सब देखते सुनते अयांश और विनित अंदर आ गए। दोनों की नज़र कभी वर्तिका पर थी तो कभी आरवी पर। तभी दिनकर जी और राधे की नज़र दोनों पर पड़ी तो दोनों ने फट से एक दूसरे की ओर देखा। राधे थूक निगलते हुए धीरे से बोला, मालिक अब। दिनकर जी अयांश की ओर देखते हुए सोफे से उठ गए। तभी आरवी अयांश से जा भिड़ी और उसकी बाँह पकड़कर बोली, पकड़ लिया। पर तभी बाहें छूटते हुए हैरानी से बोली, ये वर्तिका इतनी मोटी कैसे हो गई। तभी पिलर की ओर से भागते हुए हंसते हुए वर्तिका हॉल के बीच आ गई और ताली बजाते हुए बोली, हे हे मैं जीत गई, सोना परी हार गई, सोना परी वर्तिका यहाँ है, वो वर्तिका नहीं है, हंसते हुए। तभी आरवी ने अयांश को पहचान लिया और मन ही मन खुद से बोली, मिस्टर मेहरा, थूक निगलते हुए। और उसी वक्त अयांश की बाहें छोड़कर आरवी ने अपने कदम पीछे ले लिए। अचानक माहौल में खामोशी पसर गई। वर्तिका आरवी के पीछे आकर छुप गई और थोड़ा थोड़ा झुककर अयांश विनित को देखते हुए धीरे से बोली, सोना परी तुम चुप क्यों हो गई, बोलो ना ये कौन है। पर आरवी आंखों पर पट्टी बांधे उसी जगह जमी सी खड़ी रही। तभी अयांश ने आरवी की तरफ एक कदम बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर आरवी की आंखों से पट्टी खोल दी। जैसे ही पट्टी खोली तो देखा आरवी ने कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। तभी वर्तिका ने झुककर आगे आरवी के चेहरे की ओर देखा और मासूमियत से बोली, ओपन योर आईज सोना परी, आपने बोला ना था मुझे कि आंखें खोलनी होती हैं, अभी गेम खेल लिया हमने, आंखें खोलो वरना गिर जाओगी, जैसे मैं गिरने वाली थी जब मैं सोना परी को ढूंढ रही थी, खोलो आंखें, आरवी को हिलाते हुए। तभी आरवी ने अपनी एक आंख खोली तो ठीक सामने अयांश खड़ा था जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। ये देख आरवी मन ही मन बोली, हे बप्पा नाक फूली, यानी इनके अंदर की गुस्से वाली टंकी फुल है, कभी भी फूट सकती है, पर वर्तिका चपेट में ना आ जाए, आरवी बचाना होगा इनके प्रहार से, अभी तो बच्ची ना, इन्होंने कौन से बच्चे पाले हैं जो पता तो बच्चों के सामने कैसा बिहेव किया जाता है। तभी आरवी ने दूसरी आंख खोली तो विनित पर नजर पड़ी। ओहो ये भी गुब्बारा बने हुए हैं, पर इनके मामले में फूट भी सकता है गुब्बारा और फुस भी सकता है, पर आज तो दोनों चांस हैं। बेचारे साधु संत की प्रवृत्ति वाले इंसान विनित जी, माना मेरी तरह बोलते ज्यादा हैं, पर साफ मन, गुस्से से कोसों दूर और शांत रहने वाले प्राणी हैं हर वक्त, बगल वालों की जैसे आग बबूला नहीं रहते। पर इनकी भी क्या गलती, संगत का असर हो ही जाता है, जब हर वक्त पास में कड़वा करेला रहे तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना, मुझ पर भी पड़ा थोड़ा सा, तभी तो मेरे अंदर की मिठास थोड़ी कम हो गई। आज मैंने हॉस्पिटल में बेचारी उन दोनों नर्सों की क्या क्लास लगाई, माफ करना पप्पा मिस्टर मेहरा बनना पड़ा, प्यार की भाषा उनको समझ ही नहीं आ रही थी, आए भी कैसे, उनको इस अक्कड़चंद की डांट फटकार गुस्से की आदत जो दब चुकी थी, किसी का दोष नहीं, सबसे बड़े दोषी तो ये हैं तो मेरे सामने खड़े हैं, मानो अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। पर ऐसा नहीं होने देना है आरवी चतुर्वेदी, ना तो इनका असर खुद पर होने देना, शांति से समझ से थोड़ा स्मार्टगिरी से काम करना पड़ेगा, खुद के साथ साथ औरों को भी बचाना है, खासकर वर्तिका, अगर इसके सामने इनका बम फूटा तो ये डर जाएगी और कंट्रोल करना यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। आरवी ने लगातार एक ही सांस में ये सब खुद को कह डाला। सबकी नज़र अयांश आरवी पर थी। तभी आरवी ने अयांश और विनित की ओर देखते हुए बतीसी दिखाई क्रमशः।